يسوع ناصري مانو لوڑ تری گر گیا میں طوفان وچ مینو لوڑ تیری
خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، اپنے دن کا آغاز اس کے پاک نام سے کریں۔ خداوند فرماتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھ۔ آئیں اپنے دل، دماغ، سوچ، خیال کو اس کے سپرد کریں۔ اور اس کا سادہ اور آسان طریقہ ہے ان تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ پہلی بات، بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار، ان دیکھی اندیکھی تمام باتوں کو جو ہم نے کہی ہیں جانے انجانے میں، ان سب کا اقرار کریں۔ پہلا یوحنا پہلا باپ اس کی 6:10 میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو خداوند یسوع مسیح ہماری تمام ناراضگی کو ہم کو کیا کرتا ہے، دھو کے پاک اور صاف کرتا ہے۔ دوسری بات، حکمت اور دانائی کے لیے خداوند سے دعا کریں کہ خدا باپ اپنے کلام کو مجھے سمجھنے کی حکمت اور دانائی دے۔ اور تیسری بات، خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے اس سے قوت اور زور مانگے کہ میں تیرا کلام سن کر اس پر عمل کرنے والا بنوں، عمل کرنے والی بنوں، تاکہ اس تاریکی کی دنیا میں تیری بیٹی اور تیرا بیٹا ہوتے ہوئے تیری نمائندگی کر سکوں۔ سو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کے حضور جھکیں گے اور خاموشی میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں گے۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، اب تیرے کلام کا جو مطالعہ کرتے ہیں، تیرا پاک روح ہم سب کی رہنمائی کرے اور آج کا کلام بے تاثیر نہ لوٹے، ہمارے دلوں کی بنجر زمینوں کو پھلدار بنائے، اور خداوند تیرا بیٹا یسوع نام ہمارے دلوں پر راج کرے۔ اسی کے پاک اور جلالی اور مقدس نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آپ سب کو یاد ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے دور میں ان تمام معجزات پر جو اس نے کیے غور کر رہے ہیں۔ آج ہم اس معجزے پر غور کریں گے جس میں ایک غیر یہودی یعنی کنانی عورت کا ایمان یسوع مسیح دیکھ کر اس کی بیٹی کو جس میں بدرو تھی شفا دیتا ہے۔ یہ حوالہ آپ کو نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل 15 اس کی 21:28 تک ملے گا۔ جب تک آپ اس حوالے کو نکالتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج اس معجزے سے میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کا ایمان بڑھے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، چاہے کیسی بھی مشکل ہو، چاہے کیسے بھی ہمارے ایمان کی بنیاد کو جیسی بھی مرضی شک کی چونٹیں لگتی رہیں، ہم اپنے ایمان سے نہ ہٹے بلکہ ہمارا ایمان اس یسوع ناصری میں اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے۔ اگر آپ نے یہ حوالہ نکال لیا ہے تو میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 15 اس کی 21 میں یوں لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، जैसा तू चाहती है तेरे वास्ते वैसा ही हो, और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। इस मोजज़े को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो एक अजीब सा सवाल हमारे जहन में पैदा होता कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं इसराइल के घराने के अलावा और किसी के पास भेजा नहीं गया। आज मैं चाहता हूं कि इस मुख्तसर वक्त में हम इस मोजज़े पर गौर करें। बाइबल मुकद्दस में बहुत से मोजज़ात लिखे गए हैं, जो इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आपके ईमान की तरक्की हो। आज जिस मोजज़े को हम देखने वाले हैं, हम इसमें से गौर करेंगे। सबसे पहली बात है 21वीं आयत। यीशु यहां से रवाना होकर सूर और सैदा के इलाके को गया। सूर और सैदा का इलाका जब हम देखते हैं, ये गैर कौमों का इलाका था। ये वो इलाका था जिसमें लोग जो रहते थे वो यहूदियों से क्या करते थे, नफरत करते थे, यहूदियों के दुश्मन कह सकते हैं। और इस इलाके के रहने वाले लोग, जिसे गैर कौम कहते हैं, ये मौजूदा इलाका जिसे सूर और सैदा कहते हैं, मौजूदा इलाका लुबनान का इलाका है। गैर कौमें ये बनी इसराइल के क्या थे, रवायती दुश्मन थे। इसराइलियों को ये पसंद नहीं करते थे। इसका हवाला आप देख सकते हैं, यूएल नबी का सहीफा, उसका 3 बाप, उसकी 4 से 8 आयत तक। सो सूर और सैदा के इलाके में खुदावंद यीशु मसीह जाता है, वहां से रवाना हो रहा है, तो क्या हुआ? देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकलकर पुकारने लगी। यहां पर इस कनानी औरत को देखते हैं। कनानियों को जब देखते हैं, ये उन 7 पुश्तों में से या कौमों में से, 7 कौमें जिसके बारे में पुराना अहदनामा बयान करता है, इस्तिस्ना की किताब के उसके 7वें बाप में पहली ही आयत बयान करती है कि खुदावन खुदा ने उनसे कहा था कि जब तुम उस मुल्क को जहां पर मैं तुम्हें भेजता हूं, जिसे वादा की जमीन कहते हैं, जाओ तो वहां पर इन 7 कौमों को निकालना। उन 7 कौमों में से ये एक कौम थी जिसे कनानी कहते हैं। कनानियों को जो थे यहूदी पसंद नहीं थे, और वो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। सादा लफ्जों में कनानी यहूदियों के दुश्मन थे। सो 7 कौमों का जिक्र किया गया है इस्तिस्ना की किताब उसके 7 बाप में, उसकी पहली आयत में। सो यहां पर एक कनानी औरत को देखते हैं जो बुत प्रस्त और दूसरे खुदाओं और दूसरे देवी देवताओं को मानती है। लेकिन ये कनानी औरत यहां पर क्या करती है? उन सरहदों से निकलकर पुकारने लगी, ए खुदावंद इब्ने दौद, मुझ पर रहम कर। वो यीशु मसीह को उसके सही नाम से बुलाती है कि वो इब्ने दौद है, यानी कि दौद की नस्ल से है, और वही रहम करने वाला क्या है, मंबा है जो रहम कर सकता है। और उसकी दरखास्त क्या है, इस कनानी औरत की दरखास्त है कि मेरी बेटी में एक बदरू है जो उसे सताती है। वो अपने रोग को, अपनी मुसीबत, अपने दुख को यीशु मसीह के पास लेकर आई। इससे पहले हमें नहीं पता कि उसने कितने तबीबों, डॉक्टरों या हकीमों के पास अपनी बेटी को दिखाया। इसके बारे में कोई इलम नहीं, लेकिन ये इलम हम कर सकते हैं हासिल के उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि वो अंधों को, लंगड़ों को, बुदरू गिरफ्तों को, बीमारों को, हर तरह के मुसीबत ज़दों को क्या देता है, आजादी देता है, आजादी देता है। वो इब्ने दाऊद है, वो दाऊद की नस्ल से है। सो वो यीशु मसीह को क्या कहती है, दरखास्त करती है कि मेरी बेटी में एक बदरू है जो उसे सताती है। मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर यीशु से अर्ज की कि ये हमारे पीछे चला चला कर पुकारती है, इसे रुखसत कर दे। यीशु ने जो जवाब दिया उस दौर में, ये जवाब बहुत ही कड़क, बहुत ही कड़वा था, और अगर आज के दौर में अगर किसी से कोई कह दे तो बहुत कम लोग इस जवाब के ताबिया होंगे। वो बहुत से क्या करेंगे, नाराज होकर चले जाएंगे। आए देखे जवाब क्या दिया था यीशु मसीह ने। जवाब में उससे कहा, जब हम 24वीं आयत को देखते हैं, यीशु ने जवाब में कहा, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह शागिर्दों से कहता है कि मैं इसराइल के अलावा किसी और के पास नहीं जाता, मैं इसराइल के अलावा किसी और के लिए नहीं आया कि उनको निजात दूं, उनको रहाई दूं, उनको शिफा दूं। इस बयान में बहुत दफा शक पैदा होता है कि क्यों यीशु मसीह ने यह कहा, क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कड़वा कलाम किया, ऐसी कड़वी बात कही। मगर आगे क्या देखते हैं, उस औरत ने जो जानती थी कि वो गैर कौम है, वो कनानी है, वो इसराइल के घराने से नहीं है, वो इसराइलियों के और उनके दरमियान दुश्मनी है, उनसे कोई उनका रिश्ता नहीं, उनसे उनकी कोई करीबी दोस्ती या कोई करीबी तलक भी नहीं, वो इस बात से वाकिफ थी, कनानी औरत। जब यीशु ने ये कहा तो आज के दौर में अगर कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई और मुझसे कह दे कि आपकी और मेरी जात मुख्तलिफ है इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, तो बहुत दफा लोग मुंह बनाकर चले जाएंगे। बहुत दफा जब ऐसे हालात होते हैं कलीसियों में कि अगर कोई पासबान किसी दूसरी पासबान की कलीसिया के रुकन को कह दे कि मैं तुम्हारा चरवाहा नहीं, यहां से चले जाओ, तो बहुत दफा लोग नाराज हो जाते हैं। आप और मैं अगर एक दूसरे से कह दें कि मैं आपका जिम्मेदार नहीं, मैं क्यों आपकी फिक्र करूं, तो हमारा जवाब क्या होगा, खाओ खसमों को, अगर इसे नहीं मेरी फिक्र तो मैं भी उसकी फिक्र नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। लेकिन यहां पर एक अजीबोगरीब बात देखते हैं, यीशु मसीह इस गैर कौम कनानी औरत को जो जानती है कि इसराइली उनके दुश्मन है, यीशु मसीह जवाब में अपने शागिर्दों से कहता है कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। लेकिन इस कनानी औरत का जवाब देखते हैं 25वीं आयत में, मगर उसने आकर उससे सजदा किया। पहली बात इस औरत की जिंदगी में देखते हैं कि उसने अपने आप को खाकसार कर दिया, बावजूद जानते हुए कि उनके दरमियान क्या है, अच्छा रिश्ता नहीं, यहूदियों और कनानियों के दरमियान क्या है, दुश्मनी है। उसने क्या किया, सजदा किया। ये सजदे का लफ्ज अकीदत, अबादत, खाकसारी और अपने आप को कमजोर कर देने की या अपने आप को नीचा कर देने की तरफ इशारा है। और ये सजदे का लफ्ज खासल खास किसी ताकतवर, मोहतबर या आला कुवत वाले शख्स की तरफ इशारा है। ये कनानी औरत यीशु मसीह को अपना मालिक, अपना खुदावंत का दर्जा देती है। और यहां पर वो क्या करती है, उसे आकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंत मेरी मदद कर। खुदावंत का लफ्ज उस दौर में हाकम के लिए, इख्तियार वाले के लिए, और पुराने अहदनामे का ये लफ्ज जब देखते हैं, खुदावंत यहोवा खुदा के लिए, यहोवा के लिए इस्तेमाल किया गया था कि जिसने जो इसराइलियों का खुदा है, जो इसराइलियों का बचाने वाला है, जो इसराइलियों के लिए मुहैया करता है, जो इसराइलियों के लिए लड़ता है। सो यहोवा का यहां पर जो जुमला ये औरत इस्तेमाल करती है, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर, उसने उसे सजदा किया और उसे उसे अपना खुदावंद और मालक मानकर क्या करती है, मदद की रहनुमाई करती है, मदद की अपील करती है, मदद चाहती है। यीशु ने जवाब में क्या कहा, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। कुत्तों का जो लफ्ज उस दौर में इस्तेमाल किया जाता था, ये खासल खास गैर कौमों के लिए या गैर यहूदियों के लिए, एक नीचे तबके के लिए, गैर कौमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बहुत दफा उनको कुत्तों के नाम से, बहुत दफा उनको झूठे खुदाओं और देवी देवताओं को मानने वालों के नाम से पुकारा जाता था। यहां पर फिर यीशु मसीह ने उसे परखने के लिए, उसके ईमान को जो जानता है, शागिर्दों के सामने, शागिर्दों के सामने ये कड़वी बातें कही, ये कड़वा कलाम किया। और इस कड़वे कलाम को यीशु मसीह जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि कुत्तों की रोटी, लड़कों की रोटी लेकर, लड़के यहां पर इसराइलियों को जाहिर किया गया है, कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, गैर कौमों को, जिसमें ये कनानी औरत और दूसरी सात कौमें शामिल हैं। सो कनानियों को कुत्तों के नाम से जाना जाता था, गैर कौमों के जो भी लोग थे उनको कुत्ते कहा जाता था। सो यहां पर इस औरत ने फिर क्या कहा, उसने 27वीं आयत में उसने कहा, खुदावंद, वो अभी भी अपने उस मकसद से टली नहीं जिसके बारे के जिसके पीछे वो आई है। बहुत दफा हमारी जिंदगी में लोग जब दुआ के लिए खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, अगर उनकी दुआ का जवाब एक दफा, दो दफा, तीन दफा, एक साल, दो साल, 3 साल में ना मिले, तो वो अपना मुंह फेर कर अपना ईमान कमजोर करके क्या चले जाते हैं? दूसरे देवी देवताओं, तवीजों, धागों और पीरों, फकीरों और कब्रों और बुतों के आगे झुकने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और यहां पर ही कमजोरी है। इस औरत से हमें जो सीखने की जरूरत है वो ये है कि बावजूद खुदावंद उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही नहीं आया, दूसरी बार खुदावंद कहता है कि तुम कुत्ते हो, तुम गैर कौम हो, तुम्हारे लिए मेरा कोई, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं। और तीसरी बात, इस औरत ने क्या किया? 27वीं, उसने कहा, हां खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। वो अपने इस बयान में यीशु मसीह को अपना मालिक, अपना खुदावंद, अपना सब कुछ मानती है। वो अपने उस ईमान से नहीं हटी, उसका ईमान कमजोर नहीं हुआ, बावजूद खुदा ने उसके लिए, यीशु मसीह ने कड़वे लफ्ज इस्तेमाल किए। इस कड़वी कहानी को लिखने के पीछे खुदावंद खुदा का इस बाइबल मुकद्दस में मकसद यही है कि हम जब अपनी दुआ का जवाब हासिल ना करें तो हमें ईमान में कमजोर नहीं होना। जब हमें कोई कह दे कि तुम्हारा ईमान कमजोर है इसलिए तुम्हें यहां से शफा नहीं मिलेगी, किसी पीर के पास चले जाओ, तो हमें अपने ईमान से फिरने की जरूरत नहीं है। इस गैर कौम औरत का ईमान हम सब के लिए, इसकी मिसाल हम सब के लिए बहुत ही आला है। और मैं यकीन करता हूं कि ये मौजजा इसीलिए लिखा गया है ताकि आप और मैं इस मौजजे से सीख सकें। सो यीशु मसीह उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। यीशु मसीह कहता है कि तुम कुत्तों की मानद हो, तुम गैर कौम हो, तुम्हारा मुझसे कोई तलक नहीं, मैं तुमको कुछ मार तुम्हारे लिए नहीं करना चाहता। और तीसरी बात, उस औरत ने क्या कहा? कुत्ते भी। हां मैं मानती हूं, उस औरत ने कहा कि मैं गैर कौम हूं, लेकिन तू मालिक है, तू रहनुमा है, तू आका है, तू खुदावंद है, और तेरे ही मेज से गिरे हुए टुकड़ों में से क्या करना, मुझे खाना पसंद है। उसने बावजूद तमाम नामों के पुकारे जाने के बायस, बेइज्जती के बायस, उसे ददकारे जाने के बायस, यीशु मसीह ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, बावजूद वो अपने ईमान पर कायम रही। काश के आज हमारा ईमान इस औरत जैसा हो, काश के हम इस औरत से सीखें। बहुत दफा अफसोस से कहना पड़ता है, अगर पासबान वक्त पर ना आए तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर पासबान वक्त पर आ जाए और खुद लोग दो दो घंटे इंतजार करवाते रहें तो उनको कोई फर्क नहीं। 5 मिनट पासबान लेट हो जाए तो क्या है, लोग तमाशा बना देते हैं कि तुसी कितने रह गए सी जी। हमें ईमान से जिंदगी बसर करनी है। और यहां पर इस औरत का ईमान देखते हैं, यीशु मसीह इस औरत के ईमान की खुद दलील देते हैं, यानी कि जवाब देते हैं। 28वीं आयत में लिखा है, इस पर यीशु ने जवाब में कहा, यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ, शागिर्द उसके पास मौजूद हैं, औरत वहां पर है, और उस औरत का ईमान इतना बड़ा है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं, वो उसके पीछे चला रही है, सरहदों से निकलती हुई भीख मांग रही है, दरख्वास्त कर रही है, रहम रहम कर। यीशु मसीह ने जवाब में उसे कहा, ऐ औरत। यहां पर जब ऐ औरत का लफ्ज देखते हैं, यानी कि ये शादीशुदा औरत है। ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। अगर हमसे खुदावन खुदा कहता कि हमारा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा हम चाहें वैसा ही हो जाए, बहुत दफा लोगों का ईमान बदल जाएगा। ओह, मुझे शफा नहीं, मुझे कोठी चाहिए, मुझे शफा नहीं, मुझे सोना चाहिए, मुझे शफा नहीं, मुझे तरक्की चाहिए। इस औरत का ईमान बहुत बड़ा था और उसका ईमान दुरुस्त जगह और दुरुस्त शख्स पर था। हम ईमान किसी चीज पर तो रख सकते हैं, लेकिन वो चीज, वो बेजान चीज हमें निजात या शफा नहीं दे सकती। इसलिए यस्सु पर ईमान लाना जरूरी है। यस्सु ही ईमान का बानी है और उसी पर हमारी नजरें होनी चाहिए। और लिखा है, यीशु ने कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा गई। उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई उस बदरू से। ये मौजज़ा पेश करने का मकसद यही है कि आज आप और मैं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, सब इस बात को जाने के बगैर ईमान के खुदा को आना, खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। वो ईमान से ही हमारी जिंदगी के सफर को जारी करता है, और ईमान ही से हम अपने जिंदगी के सफर को गुजारते हैं और ईमान ही से खत्म करेंगे। इसलिए मेरी दुआ है कि इस कनानी औरत से, इस गैर कौम के ईमान की औरत से हम सीखें कि जो कुछ भी हो, खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं। खुदा दुआओं का जवाब देने में देर तो करता है, लेकिन वो कभी भी हमको भूलता नहीं है। हमें ईमान से मांगते रहने की जरूरत है। अगर खुदा दुआ का जवाब ना दे तो खुदावन तेरा शुक्र हो, ना के खुदा को छोड़कर किसी गैर मबूद या किसी कब्र या पीर फकीर के पीछे, सवाए एक खुदा के जो इब्राहिम, इसहाक, यकूब का खुदा है, उसके सिवा किसी और को सजदा नहीं करना है। आए हम खुदा के जूर चुके, और मेरी दुआ है कि हम इस कनानी औरत जैसा ईमान हासिल करके और ज्यादा बरकत पाएं। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, सबको छू, आज का पैगाम हम सब के ईमान की तरक्की के लिए हो, ताकि जब हमारी आजमाइश हो तो तू खुदाऊं खुदा हमसे चाहे जो कुछ भी कहे, चाहे खामोश रहे, हम बार बार तुझसे मांगने से शर्मिंदा ना हो, क्योंकि तूने कहा है, मांगते रहो तो तुमको मिल जाएगा। यीशु के नाम में सबको बड़ी बरकत दे। आज के दिन में सबकी रहनुमाई कर, ये दुआ मांगता हूं। आमीन।